वीर बजरंग बली रावरो सुन्यो है जस संतन सुनायो सद ग्रंथन प्रकाशो है कंजवत कौशल किशोर जू के दासन को रावरो प्रताप प्रभु भानु की प्रभासो है भनत राजेश अब मेरी सुन लीजे टेर तन बहु रोग मन मोह जाल फांसो है राम गुण गायक पे कली को प्रभाव चले आपके रहत यह अजब तमाशो है श्री सीताराम जी महाराज
की जय
श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की
जय
मन कर विषय अनल बन जरई मन करि विषय अनल बन जरई
मन करि विषय अनल बन जरई मन करि विषय
हो जो यही सर पर हो ये सुखी जो यही सर पर मन करिए विषय अनल मन जरई मन कर हो ये सुखी जो ये सर पर मन कर
गरीब से अनल बन जरई हो सुखी जो यही सर पर मन करी मन करी से अनल बन जरई
मन रूपी हाथी विषय बन की वासना रूपी दावाग्नि में जल रहा है। वह अगर श्री रामचरितमानस के मान सरोवर में डुबकी लगा ले तो सुखी हो जाए। जीवन के दो तट हैं, इसीलिए जीवन जिस जगत में रहता है उसको भाव सागर बोलते हैं। एक तट अनुकूलता का है, एक प्रतिकूलता का है। कभी हम अनुकूलता से प्रसन्न हो जाते हैं, कभी प्रतिकूलता से परेशान हो जाते हैं। इच्छा पूरी न हो तो दुख। संसार भर के दुख का कारण केवल एक है, हम जो चाहते हैं वो पूरा नहीं हुआ। कामना पूरी नहीं होने पर ही क्रोध आता है। कामात क्रोधो भी जायते। यहां हम उचित अनुचित की बात नहीं कह रहे हैं, पर हम जो चाहते थे वह नहीं हुआ, यह क्रोध। इच्छा पूरी ना हो तो दुख, और इच्छा पूरी हो जाए तो थोड़ी देर का सुख, और इच्छा ही ना रहे तो आनंद। सुख की इच्छा पूरी होते ही फिर दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपया बनाती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। अरे चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए, और चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे,
मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे।
ना अटको ना भटको, ना अटको ना भटको, ना अटको ना भटको, यह देश फिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे,
मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे।
वासना पास बुलाती,
देह वासना पास बुलाती,
देह वासना पास बुलाती,
देह वासना पास बुलाती,
भ्रम का फंदा फेंक फंसाती,
भ्रम का फंदा फेंक फंसाती,
भूल भुलैया में पड़कर,
भूल भुलैया में पड़कर,
मत धोखा खाना रे, मुसाफिर जाना रे,
मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे।
काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ,
काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ,
सबका अनुभव है। कामना की पूर्ति थोड़ी देर सुख देती है बस, फिर दूसरी कामना उत्पन्न हो जाती है। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ,
काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ,
नहीं मिले तो होता क्रोध,
नहीं मिले तो होता क्रोध,
देखो क्रोध और लोभ तो है ही नहीं। सुन लो भैया, केवल काम है। काम की पूर्ति होते ही लोभ अपने आप उत्पन्न हो जाता है और काम में बाधा पड़ते ही क्रोध अपने आप उत्पन्न हो जाता है। ये तो काम से ही उत्पन्न होने वाले विकार हैं। काम की पूर्ति तो लोभ, और काम की पूर्ति में विघ्न तो क्रोध। तो करें क्या? काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे,
मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे।
अच्छा देखो, कुछ चीजें आवश्यक होती हैं, जैसे भोजन आवश्यक, वस्त्र आवश्यक, क्योंकि इसके बिना कोई नहीं रह सकता। जो सबकी जरूरत हो वो आवश्यक है। अच्छा अब एक बात बताना। क्यों भैया? भोजन के बाद अब कहां जा रहे? थोड़ा आते हैं घूमकर। घूमकर काहे के लिए जा रहे? गुटका, गुटका, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट। अगर ये आवश्यक होते तो सबके लिए होते, पर ये आवश्यक नहीं है, ये विलासिता है। और इसीलिए भगवान आवश्यकता की तो पूर्ति करते हैं, विलासिता हमें बर्बाद करती है। इसलिए विलासिता से बचना चाहिए, आवश्यकता की पूर्ति भगवान से प्रार्थना करके करनी चाहिए। एक सज्जन दूसरे से कह रहे थे, सुना है शराब पीने से जुकाम चला जाता है, शराब पीने से जुकाम चला जाता है। तो वो भी मित्र बड़ा मजा किया था, वहां चला जाए पी ले। क्यों? बोले जिन्होंने शराब है पी उनकी जमीनें चली गई, जायदादें चली गई, तो जुकाम क्या चीज है, ये भी चला जाएगा। ले जाएगा। अच्छा फिर हमें थोड़ा सावधान होना है। ये महापुरुषों का संदेश है, हम लोग तो माध्यम है, हम तो माध्यम है, पर महापुरुषों का संदेश आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो हम जब भी कहीं जाते हैं कपड़े बदलते हैं, जैसे यहां भी आए तो कपड़े बदल के आए, या सवेरे नहा धो के कहीं चले तो कपड़े बदल के, घर में चाहे जैसे रहें पर बाहर निकलते हैं तो कपड़े बदलते हैं। हमने भी कपड़े ही बदले हैं, ये बार बार जन्म लेना कपड़े ही बदलना है। जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, और मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये कपड़े बदल, और कपड़ा हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे, है भूत पांचों का बना यह वस्त्र सुंदर आपका, और बनता बिगड़ता है यही नहीं कुछ बिगड़ता आपका। ये कपड़े तो कई बार कपड़े बदले। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। अब नर्तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे,
मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे।
नर्तन की चुनरी पर दाग न लगे। कैसे नहीं लगे? राम नाम महिमा विश्वास,
राम नाम महिमा विश्वास,
दीन दास राजेश की आस,
दीन दास राजेश की आस,
काम इसी का दीन जनों को प्रभु से मिलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे,
मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे।
अच्छा देखो एक बात आपको बताएं, एक जगह कीर्तन हो रहा था, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। भक्त लोग बड़े आनंद से कर जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। एक सज्जन बैठे थे, सो वो कीर्तन ही ना करें, उसांस भरे। तो एक बगल वाले ने पूछा, कीर्तन क्यों नहीं करते, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। सो बोले, रहिए क्या, रहना ही पड़ेगा, और कर भी क्या सकते हैं। अरे जब रहना ही पड़ेगा तो जरा आराम से रहे। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए।
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान।
चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम,
चाहते आराम हो तो रोज ही सुबह शाम,
सीताराम सीताराम कहना चाहिए,
सीताराम सीताराम कहना चाहिए,
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए,
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए।
और इन अनुकूल प्रतिकूलताओं में अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य, अनुकूल
प्रतिकूल दोनों ही कूलों के मध्य,
सरिता समान सदा रहना चाहिए,
सरिता समान सदा रहना चाहिए,
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए,
जैसे रखे राम जी रहना चाहिए।
अजय देखो, हम सब लोग एक शिकायत करते हैं। क्या शिकायत करते हैं? मन कहना नहीं मानता। एक बड़े सिद्ध संत थे, उन संत के पास एक सज्जन गए, कहने लगे, महाराज हमारा मन हमारी बात नहीं मानता, मन हमारा कहना नहीं मानता। उसको लगा अब संत जी उपदेश देंगे, पर उन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही। बोले, क्या तुम्हारी समस्या है? कहा कि मन हमारी बात नहीं मानता। तो तुरंत बोले, मन तुम्हारी बात नहीं मानता? नहीं। तो तुम मन की क्यों मानते हो? जब मन तुम्हारी नहीं मानता तो तुम मन की मत मानो। बोलो, हम क्यों मानते चले जाते हैं? जब मन हमारी नहीं मान रहा, जब मन तुम्हारी मानने लगे तो तुम मन की मानने लगना। देखो भैया, एक बात अंत में कह रहा हूं, फिर कथा सुनाऊं। मन बिल्कुल खराब नहीं है। एक आदमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला चला गया बंगलौर, रेडियो ले गया अपना साथ, सुहा खोले रेडियो, उसमें वहीं की भाषा निकले, कड़पड़ पड़ तोड़ तो कुछ समझ में ना आ रहे। उसने कहा, हमारा रेडियो बिगड़ गया, घर में अच्छा था, खोलते ही हिंदी के गीत आते थे या कुछ, दिखाएं क्या करें, फेंके। मित्र उसका था, बोले बंद कर दो, ये ठीक हो जाएगा। कैसे? बोले तुम घर चलो। वो जैसे ही यहां आया यहां खोला तो फिर वही बोले ये तो बढ़िया है। तो उन्होंने कहा ये बिगड़ा नहीं था, ये तो तुम उस रेंज में ले गए थे, जिस स्टेशन की रेंज में ले जाओगे वहीं का प्रोग्राम सुनाएगा ये। और मैं भी आपसे कहता हूं आपका ये मन रेडियो है, स्टेशन की रेंज में ले जाओगे वहीं का प्रोग्राम सुनाएगा, कुसंग की रेंज में ले जाओगे तो वैसा प्रोग्राम सुनाएगा, सत्संग की रेंज में ले जाओगे तो वैसा प्रोग्राम सुनाएगा है। इसलिए ये दर्पण है, जिसके सामने रखोगे उसी का चेहरा दिखाएगा। इसलिए भगवान के नाम का स्मरण और सत्संग करते रहना चाहिए। भगवान राम, माता जानकी, श्री लक्ष्मण जी, तीनों ने सत्संग किया और सत्संग के बाद परीक्षा हुई। बड़े बड़े सत्संगियों के पास परीक्षा लेने सूपनखा आती है। सूपनखा को किसी पात्र विशेष के रूप में न देखें, सूपनखा माने वासना। कई बार लोगों को लगता है इतने बड़े उनके पास ये वासना। परीक्षा लेने आई सत्संगी सच्चे की कच्चे, अजस ये सुंदर है नहीं पर रुचिर रूप धरी प्रभु पां आई। ये सुंदर बनकर आई है नहीं सुंदर, और इसका अर्थ यह है वासना सुंदर होती नहीं है पर सुंदर बनकर आती है। और भगवान राम से क्या बोली आते ही, रुचिर रूप धरि प्रभु पां जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। ये बचन तो बोली कम मुस्काई ज्यादा। वासना ऐसी थी बोलती कम है मुस्कुराती ज्यादा। और क्या बोली,
तुम सम पुरुष न,
आपके जैसा तो कोई पुरुष है ही नहीं। ब्रह्मा जी को प्रसन्नता हुई कि चलो राक्षसों में भी कोई ऐसा भक्त हुआ जो भगवान को कह रहा है त्वमादि देवा, हे प्रभु आपके जैसा कोई पुरुष नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा देख तो ले कौन है। तब तक सूपनखा आगे क्या बोली,
नमो समनारी।
ब्रह्मा जी ने माथा पीटा, सब गड़बड़ कर दिया इसने। और वो बोली हमारा आपका संबंध और किसी ने नहीं लिखा, यह संयोग विधि रचा विचारी। ये तो ब्रह्मा जी ने ही संयोग बनाया हमारा आपका। ब्रह्मा जी भी अपना माथा पीट रहे थे, हे भगवान हमने कब संयोग लिखा इसका। अब देखो श्री राम जी पूछते हैं, बल्कि पूछे ही नहीं अपना परिचय दे रही, मानो भगवान पूछे कि तुम्हारा विवाह हुआ नहीं। हो तो जाता, मैंने किया नहीं। किया क्यों नहीं,
क्योंकि मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखूं खोज लोक त्यूं नाही।
मेरे अनुरूप पुरुष तो तीनों लोकों में नहीं है। कौन गया था देखने, तुम्हारे परिवार के लोग, भाई पिता? नहीं, हमारे यहां भाई पिता नहीं जाते। फिर हमारे यहां तो हम ही जाते हैं। देखूं खोज लोक त्यों नाही, हम ही ने खोज कर देखा, कोई नहीं मिला ना।
ताते अब लग रही कुमारी,
इसलिए अब तक मैं कुमारी हूं। भगवान ने कहा फिर हमें देखकर क्या विचार है? तो क्या बोली? मन माना किछु तुम्हें ही निहारी, तुम्हें देखकर कुछ मन, ठीक है पूरी तरह परफेक्ट तो नहीं लेकिन जितने हो ठीक है, काम चल सकता है। अच्छा देखो, भगवान ने सोचा कि हमारे यहां पहले बालिका कुमारी होती है, विवाह के बाद नारी होती है, ये भगवान ये कह रही है नमो सम नारी, ये पहले नारी है बाद में कुमारी है, ताते अबलग रही कुमारी, यही समझ में नहीं आता कि नारी है कि कुमारी है। भगवान राम ने कितना बढ़िया कार्य किया, ये सत्संगी कैसे बचें ये उपाय बताया जा रहा है इस प्रसंग में। राम जी पर जब इसने वासना ने आक्रमण किया तो राम जी ने देखा किधर, सीतई चितई कही प्रभु बाता, श्री सीता जी की ओर देखा और संकेत यह कि किसी गृहस्थ के जीवन में कोई वासना आक्रमण करे तो उसे अपनी पत्नी की ओर देखना चाहिए, धर्म पत्नी की ओर देखना चाहिए, सीतई चितई। और दूसरा यह गृहस्थ के लिए संकेत है और विरक्तों के लिए, किसी ज्ञानी के जीवन में कोई देह वासना आक्रमण करे तो उसे देही की ओर नहीं वैदेही की ओर देखना चाहिए। और श्री सीता जी भगवान के चरणों की ओर देख रही, छिन छिन चरण सरोज निहारी, भक्ति के जीवन में वासना आक्रमण करे भक्त के जीवन में तो उसे भगवान के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, ज्ञानी के जीवन में वासना आक्रमण करे तो देही की ओर नहीं वैदेही की ओर देखना चाहिए। दो की तो परीक्षा हो गई, तीसरे लक्ष्मण जी थे, भगवान ने कहा इनकी भी परीक्षा हो जाए। तो भगवान क्या बोले, सीतहि चेतय कहि प्रभु बाता,
कही प्रभु बाता, सीतई चितय कही,
आहि कुमार मोर लघु भ्राता, सीतई चितय कही
बाता, सीतई चितय कही।
देखो भगवान ने श्री सीता जी की ओर देखकर कहा, मन ही मन सोचा कि हमें देखकर कुछ मन माना, मन माना कि तुम्हें निहारी। भगवान ने सोचा हम ऐसी जगह भेजेंगे जहां पूरा मन मान जाएगा, जीवन बदल जाएगा। और क्या बोले, आहाई कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुमारा है, तुम चाहो तो वहां बात कर सकते। कई लोगों को बड़ी आपत्ति होती कि भगवान झूठ बोल गए, भगवान और झूठ बोले, भगवान। एक सज्जन हमसे कहने लगे, हमको तो बड़ा अखरता, भगवान और झूठ, भगवान झूठ बोल गए। अरे हमने कहा किसी महात्मा से बोले, सूपनखा से बोले, हमारे यहां नीति कहती सठे साठ्यम समाचार्य। बोले फिर भी तो, हमने कहा सुनो भगवान बिल्कुल झूठ नहीं बोले, सूपनखा कुमारी नहीं थी, इसका विवाह हो चुका था, इसके पति का नाम था विद्युत जीह, विद्युत जीह, ईर्ष्या के कारण अकारण रावण ने उसका वध करा दिया। सूपनखा ने चूड़ियां नहीं छोड़ी, प्रतिज्ञा की कि जिस दिन रावण का सर्वनाश करा दूंगी उस दिन चूड़ियां फोड़ूंगी। तो सूपनखा कुमारी नहीं है, विवाहित है, पर राम जी से कह रही है न मौसम नारी रही कुमारी, तो भगवान ने भी कहा कि सूपनखा जैसे तुम कुमारी हो वैसे ही हमारा भाई लक्ष्मण भी कुमारा है। मतलब न तुम कुमारी हो न वो कुमारा है, विवाह होने के बाद भी हो सकता है लंका में तुम अपने को कुमारी कहती हो, तो लक्ष्मण जी भी वैसे ही कुमार है। और भगवान लक्ष्मण जी की परीक्षा लेना चाहते थे, क्योंकि सत्संग के बाद तो परीक्षा होगी। सूपनखा लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी सूपनखा से बोले तो प्रभु बिलो की बोले मृदुवाणी, देखा प्रभु की ओर और बात की सूपनखा से। कितना अद्भुत कार्य है, दृष्टि में भगवान है और सूपनखा से बात करते हुए बोले सुंदरी सुनो मैं उनकर दासा। जब सुंदरी कहा तो सूपनखा बोली अद्भुत है ये, मुझे बिना देखे सुंदरी कह रहे हैं, देखेंगे तो बलिहार हो जाएंगे। तो बोली मेरी ओर देखो तो, लक्ष्मण जी बोले हम जब तक नहीं देख रहे तभी तक तो सुंदरी हो, जब हम देखेंगे तो सुंदरी रहोगी नहीं। ये वासना तभी तक सुंदर प्रतीत होती है जब तक वैराग्य की दृष्टि से इसे नहीं देखा जाता। लक्ष्मण जी वैराग्य हैं। अब भगवान ने मजाक किया लक्ष्मण जी से, व्यंग किया, आई कुमार मोर लघु रहा था। अब लक्ष्मण जी को लगा कि बताओ राम जी हमसे भी, हम तो उनके बालक हैं। ता तुम्हारो मातु वैदे ही पिता राम सब भांति से नहीं, माता ने ये समझाया ये हमसे मजाक कर रहे हैं। लेकिन फिर बात याद आई, उपदेश ये जय तात तुम थे राम से ये सुख पावहीं, राम जी विनोद कर रहे तो तुम भी उन्हें सुख पहुंचाओ। तो लक्ष्मण जी ने भी विनोद का उत्तर विनोद में ही दिया, कहने लगे सुंदरी सुनो हम तो उनके दास हैं, पराधीन नहीं तोर सुपासा, पराधीन है स्वतंत्र नहीं है, तुम्हारी रुचि से कुछ नहीं कर सकते। हां वो चाहें तो प्रभु, एक तो प्रभु है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, प्रभु समर्थ। और फिर एक व्यंग किया, वो कहते हैं कि विवाह हो चुका है, नहीं नहीं कौशलपुर राजा अयोध्या के राजा हैं, अयोध्या के राजाओं के तो पहले भी कई विवाह होते रहे, स्वयं दशरथ जी के 3 विवाह हुए, इनके 2 हो जाएंगे तो क्या कोई हर्ज नहीं, जो कुछ करें उन्हें सब छा जा, उन्हें सब शोभा देता है, जब तुम्हें यहां भेज दिया। अब गई राम जी के पास, राम जी ने फिर इस आवागमन में जो विघ्न पड़ा तो क्रोध उत्पन्न हो गया। आप देख लेना वासना का चेहरा जितना सुंदर दिखाई देता है, क्रोध आ जाए तब देखना चाहिए। हम लोगों को भी क्रोध आए तो दर्पण में देखना चाहिए जरा, बिल्कुल रूप भयंकर प्रकट। लक्ष्मण जी ने देखा कि भयंकर रूप है, लक्ष्मण अति लाग होते ही नाक कान बिनु कीन। अच्छा नाक कान इकट्ठे कैसे काट दिए, कोई नाक कटाए तो कान कटाने को खड़ा रहे। लक्ष्मण जी ने मानो धनुष की प्रत्यंचा चारों तरफ से ऐसे उसके सिर पे लगा के जो ऐसे किया तो नाक कान सब एक साथ। इसमें ऐसा नहीं है कि ये नारी जाति के साथ, नहीं नहीं भाई, इसको साधकों की दृष्टि से देखें, यह कथा पुरातन है और यह कथा सनातन है। सूर्पणखा को वृत्ति के रूप में देखें और श्री लक्ष्मण जी को वैराग्य के रूप में देखें। युद्ध राम जी की ओर से शुरू हुआ है, रावण की ओर से नहीं। लक्ष्मण अत लाग होते ही नाक कान बिनु कीन, और ताके कर रावण का मनो चुनौती दी। क्या बात, अब मैं कहता हूं वासना पर जिसने विजय प्राप्त कर ली वही जीवन के विविध विकारों पर विजय प्राप्त कर लेगा। सूपनखा गई खरदूषण के पास, खरदूषण पहन गई बिलपाता, खरदूषण त्रिशिरा, हाँ बड़ी भारी सेना लेकर आया। भगवान राम ने देखा खरदूषण को लेकर आ रही है। राम जी लक्ष्मण जी से बोले, ले जाने की जाहू गिरी कंदर, आवा निशिचर कटक भयंकर। श्री जानकी जी को लेकर गिरी कंदरा में चले जाओ, राक्षसों का समूह आ रहा है। भैया आप अकेले रह जाएंगे, भगवान ने कहा बाद में समझाएंगे। श्री सीता जी आपकी शक्ति है, मैं आपका सेवक हूं, शक्ति सेवक दोनों को विदा कर रहे हो, फिर राक्षसों पर विजय कैसे प्राप्त करोगे? भगवान ने कहा राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए न शक्ति की जरूरत है न सेवक की, तुम जाओ। लक्ष्मण जी जानकी माता को लेकर गए और जब राक्षस आए तो राम जी ने एक ही काम किया, न धनुष उठाया न बाण चढ़ाया, ना वो जितने राक्षस थे उन सब के भीतर भगवान प्रकट हो गए। हो गए कि नहीं? सबके भीतर भगवान प्रकट हो गए। अब राक्षस एक दूसरे में राम जी को देख रहे, सबके भीतर ये रहे मारो, ये रहे मारो, और राम जी दूर खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। राक्षस आपस में लड़के मर गए, देखें परस्पर राम करी संग्राम, रिपुदल लरी मरियो। ये प्रसंग कितनी सुंदर शिक्षा देता है। 14,000 राक्षस मर गए। मैं भी कहता हूं कि चाहे जितने विकार हमारे आपके जीवन में हों, चाहे जितने विरोधी आपके जीवन में हों, आप सब में भगवान को देखना शुरू कर दें, विकार अपने आप मिटकर समाप्त तो हो जाएंगे। सब में भगवान को देखें। धुआं देखे खर दूषण केरा, सुपन खात प्रेरा, सुपन खा सुपन के, सुपन खा तब रावण प्रेरा, सुपन खा रावण 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 रावण। अब रावण के पास गई रोते हुए। रावण ने कहा क्या हुआ? ये तुम्हारे नाक कान नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम लक्ष्मण नाम के दो तरुण तपस्वी दंडक वन में, उनके साथ सुंदरी स्त्री। भैया मैं तो ऐसी घूमने गई थी, मुझे देखकर कुछ कहने लगे। मैंने कहा कि नहीं मैं ऐसी नहीं, तो मेरे नाक कान काट बोलो। कोई ठिकाना नहीं महाराज, कब क्या कहने लगे। रावण ने कहा ऐसा? मैं तो वैसे ऐसी गई थी। तो तुम खरदूषण के पास नहीं गई? सुपर्णखा बोली गई थी। वो तुम्हारी सहायता के लिए नहीं गए? गए थे फिर गए। रावण सोचता है खरदूषण मौसम बलवंता, मेरे जैसा बलवान तिन्ही को मारई बिनु भगवंता, भगवान के अतिरिक्त उसे कौन मार सकता।
कहीं भगवान का अवतार तो नहीं हो गया। अच्छा ठीक है मुझे, और सूपनखा ने मालूम क्या कहा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, प्रीत प्रणय बिनु मदते गुनी, नासई वेग नीत अस सुनी। भगवान को सौंपे बिना सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं, मद से गुणी नष्ट हो जाता है, आदान प्रदान के बिना प्रीति नष्ट हो जाती है। किसी ने कहा आज तो सूपनखा बड़ा सुंदर व्याख्यान दे रहे हैं, हरि समर्पे बिनु सत्कर्म। एक राक्षस बोला देख नहीं रहा, इलाज हो गया है, नाक कान कट गए तो दूषित रक्त सब बह गया। रावण ने कहा तुम जाओ मैं करूंगा कुछ। रावण एकांत में बैठकर सोचता है, सुन रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। अगर भगवान का अवतार हो गया है तो शरण में जाओ ना, तो मैं जाए बैर हठ करी हूं, बैर करूंगा, प्रभु सर प्राण तजे भवतरी हूं। अगर वो भगवान है तो बाण लगने से मेरा उद्धार हो जाएगा, और नहीं है तो उनकी पत्नी को चुरा लाऊंगा। भगवान राम को जानने गया। अच्छा राम जी ने अपना ज्ञान दिया ही नहीं कि हम भगवान हैं। किसी ने कहा कि रावण को ज्ञान क्यों नहीं दे रहे, भगवान बोले ज्ञान देने से क्या फायदा, जो पहले से फैसला किए हुए हैं तो भगवान भी होंगे तो मैं बैर ही करूंगा, जिसे बैर ही करना है लड़ना ही है उसे भगवान का ज्ञान देने से क्या फायदा है। यह रावण का मार्ग है, पर यह मार्ग आदर्श नहीं हो सकता। श्री रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि बड़े बड़े मकानों में शौचालय बना होता है, उसमें एक दरवाजा पीछे से रहता है, उस रास्ते से भी अंदर आया जा सकता है, लेकिन यह कोई आदर्श कार्य नहीं है कि मकान में प्रवेश करने वाला उस छोटे से शौचालय के दरवाजे से अंदर जाए। मालिक तो वो है जो मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करे। रावण ने भी प्रवेश किया। एक ने कहा तीरथ करूं मठ मंदिर बनाऊं दिव्य, इतनी भला कहां है हस्ती मजदूर की, ध्यान में तो क्षण एक मन मेरा लगता नहीं, साधना आराधना तो बात बड़ी दूर की, बिंदु कभी एक ही है सुखद उपाय मिला, शायद इसी से फलेगी कामना क्रूर की, करूंगा कुसूर तो किसी दिन अदालत में जाकर ही देख लूंगा सूरत हुजूर की। तो मैं जाए बैर हठी करिया हूं,
बैर करो।
रावण ने ये योजना बनाई, चला अकेल जान चढ़ तहवा, और भगवान ने भी योजना बनाई। लक्ष्मण गए बनही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहंस कृपा सुख वृंद, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करो ललित नर लीला, तुम पावक मह करो निवासा, जब लग करो निशा चरना। आप अग्नि में निवास करें, अग्नि में निवास करने का अर्थ अभी तक आप मुझे करुणा की प्रेरणा देती रही, अब आप मेरे क्रोध अग्नि में रहकर राक्षसों को मारने की प्रेरणा देना, क्योंकि आपकी प्रेरणा से ही मैं सारे कार्य कर सकता हूं, क्योंकि ब्रह्म में कोई इच्छा नहीं, भक्ति में इच्छा, तो भक्त की इच्छा जब भगवान स्वीकार कर ले तो ये लीला होने लगती है। तुम पावक मह करो निवास, प्रभु पद ही ये धरी अनल समानी। रावण गया मारीच के पास, और मारीच ने देखा रावण आया, और रावण ने दसमुख गए जहां मारीचा, हाथ जोड़े सिर झुकाए, रावण ने सिर झुकाया, मारीच कांपने लगा, कहा रावण तुम्हें सिर झुकाना कांप रहे हो। बोले रावण झुका रहा है सिर इसलिए डर है, मान लो सांप ऐसे रहे तब कोई दिक्कत नहीं, झुके कोई समझे प्रणाम कर रहा है। नवन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई। अंकुश नीचे गिरता है तो हाथी को पीड़ा, सांप नीचे झुकता है तो जीवन को खतरा, और बिल्ली जब आक्रमण करेगी तो नीचे झुक के ही करेगी। बिलैया दंडवत वैसे ही कहते हैं, जितनी झुकेगी उतनी झपट्टा मारेगी। रावण बोला मामा जी आप हिरण बनो, हम तो अच्छे भले आदमी हिरण काहे को बना रहे हो, हमें हरण करना है इसलिए आप हिरण बनो। मारी झूलन ना बने, रावण का स्वर बदल गया तो मार मार के बनाएंगे, बनो। मानीच ने भी सोचा ये वही उन्हीं राम जी के पास जाना है जिनका बाण मुझे लगा था उस समय। हिरण बनने को उतर दे तो मुहे बधव अभागे, बधव ऐसा शब्द है, बधव इधर से भी बधव उधर से भी बधव, इधर भी मरेंगे उधर ही मरेंगे, तो राम जी के सामने ही जाके। लेकिन मन में सोच रहा है मारी आज देखी हूं परम स्नेही आज राम जी का दर्शन करूंगा, मम पाछे धर धावत धरे सरासन बाण, पुनि पुनि प्रभुई बिलोकी हूं धन्य नमो सम आन। स्वर्ण मृग बनकर भगवान के सामने खड़ा हो गया श्री सीता जी ने देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, बोली सुनऊ देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। इस हिरण की छाल बड़ी सुंदर है, अत्यंत सुंदर है। भगवान ने कहा ये मानीच है कपटी है, कपट कहीं सुंदर होता है? श्री जानकी माता ने कहा कि प्रभु इसका कपट भी सुंदर है। क्यों? का जब कपटी नहीं था तो आपसे दूर था, और कपटी बना तो आपके पास आ गया। धन्य है ऐसा कपट जो जीव को भगवान से जोड़ देता हो। सत्य संध प्रभु बध करे यही। भगवान ने कहा अब ठीक है, उठाया धनुष चढ़ाया बाण, लक्ष्मण श्री सीता जी की रखवाली करना, राम जी चले। अब मारीच भागे आगे देखे पीछे, भगवान ने कहा जब उधर भाग रहे तो इधर क्या देख रहे। मारीच ने कहा मेरा भाग्य मुझे मजबूर कर रहा है, दूर ले जा रहा है आपसे, लेकिन भाव आपकी ओर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं पास आया भागा ही इसलिए क्योंकि मैंने सुना सन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोठी अगर नासो तब ही आप कहते हैं। तो भाग क्यों गए? कपटी हूं मोही कपट छल छिद्र ना भावा, ये भी आप भाग रहा हूं आगे, भाग्य उधर ले जा रहा है पर भाव इधर देखने के लिए मजबूर कर रहा है। भगवान ने कहा तुम भाव से मेरी ओर देख रहे हो तो तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें गति दे दूंगा। मारीच ने किया क्या? प्रगटत दुरत करत छल भूरि,
प्रगटत दुरत करत छल भूरि, करत छल भूरि।
यही विधि प्रभु गयऊ ले दूरी,
कभी छिपता है कभी प्रकट होता है, छल करते हुए जा रहा है, भगवान को बहुत दूर ले गया। तब तक राम कठिन सर मारा, मानिच यही कह रहा है कि मुझमें तो इतने योग्यता नहीं कि आपके पास आऊं, कपटी हूं, लेकिन मैं ये देख रहा हूं क्या आप भी मुझ तक नहीं आ सकते। भगवान आए, बाण मारा, लेकिन वह हरे मारी, मरते मरते क्या बोला, अब तो मर ही रहा था, पर लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा, हा लक्ष्मण हा लक्ष्मण, मतलब मरते मरते काम रावण कई किया, मरा राम जी के हाथ। ये इसका स्वभाव, अभी तो इतने भाव की बातें कर रहा था, क्या ये भक्त नहीं है? भक्त है, भाव है, पर स्वभाव क्यों नहीं बदला? भगवान जब मारीच को मारकर लौटे तो ये नहीं कहा कि मारीच को मारकर लौटे या हिरण को, ना, खलबदि तुरंत फिरे रघुवीरा, खल है और खलऊ करें भल पाए सुसंगु, लेकिन मिटे न मलिन स्वभाव अभंग। एक रेलगाड़ी से कई लोग जा रहे थे, दुर्घटना हुई, डॉक्टरों का एक दल गया, कई लोग रेलगाड़ी से नीचे पड़े, मूर्छे, आंख बंद, घायल, अनेक लोग मर गए। डॉक्टरों का दल छानबीन कर रहा था कौन बचा कौन मरा, उन्होंने देखा एक आदमी मरा पड़ा है और उसके बगल में जो एक आदमी है वो मरणासन्न है, मरा नहीं। तो उस मरणासन्न व्यक्ति को थोड़ा होश था तो उसने मरे हुए आदमी की जेब में हाथ डाला और उसका मनी बैग पर्स निकाल और निकाल पे छाती पर रखा और मर गए। मतलब मर तो गए पर काम मरते मरते वही किया जिसके लिए रेल में बैठे थे। सुकृत न छाड़े सुकृति कपट न कपटी नीच, और मरत सिखावन दे गए गीधराज मारीच। गीधराज के पंख रावण के हाथों कटे पर काम उन्होंने राम जी का किया, और मारीच राम जी के हाथों मरा पर काम उसने रावण का किया। लेकिन फिर एक बात कहूं, ये कथाओं को बड़े ढंग से श्रवण करना चाहिए और कहना भी ढंग से चाहिए। यहां सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मारीच मरा तो भगवान ने मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना, मुनियों को दुर्लभ गति दी मारीच को। फिर वही बात कि जब इतना गलत है तो इतनी गति मिलनी चाहिए उसे। एक सज्जन कह रहे थे कि मारीच तो इतना खराब और उसको भगवान ने मुनि दुर्लभ गति। हमने कहा एक बात बताओ, क्या हमने कहा आपके यहां रामलीला हो या कोई मारीच का अभिनय करे? हाँ, तो हमने कहा उसे पुरस्कार मिलेगा कि नहीं, इनाम मिलेगी कि नहीं? बोले वो रामलीला है। हमने कहा ये भी रामलीला है, मारीच ने ऐसा अभिनय किया कि भगवान ने मुनि दुर्लभ गति पुरस्कार दिया। ही लीला है, इसमें कोई भला बुरा नहीं है। हमारे साथ एक सज्जन रहते थे, वयोवृद्ध थे, किसी बालक ने उनसे कुछ कह दिया, बैठ जाओ, बैठो बैठो, या जहां खड़े वहीं बैठ जाओ। वयोवृद्ध थे, एक दिन नाराज हो गए और महाराज नाराजी में कुछ बोले नहीं, वह मुंह फुलाए बैठे। अच्छा, आपने देखा होगा क्रोधी आदमी कम बोलते, उनसे पूछो क्या बात, ऐसी मुंह फुलाए बैठे। हमने पूछा क्या हो गया?
कुछ नहीं।
हमने कहा ऐसे तो नहीं रहते थे,
कुछ है ही नहीं।
तो हमने कहा नहीं नहीं पहले तुम्हारा चेहरा ऐसा ही था। बोले कह के और करा दो। तो हमने कहा क्या बात, क्या हुआ? बाद में पता लगा किसी लड़के ने उनसे कुछ कह दिया था। तो हमने लड़के को बुला के डांटा कि ये वृद्ध है, ऐसे बोलना चाहिए तुम्हें, क्षमा मांगो। उसने क्षमा मांगी तो खुश हो गए लड़का। तो चल फिर जब खुश हो गए तब तो हमने उनसे पूछा कि हमारे पास आने के पहले क्या करते थे। तो बोला हम रामलीला में अभिनय करते थे। तो हमने कहा रामलीला में अभिनय करते थे? हाँ। तो हमने कहा रामलीला में अभिनय करते समय किसी ने कुछ बुरा भला कहा अभिनय में? बोले बुरा भला पेटे तक है। क्यों? बोले हमें कोई अच्छा पाठ मिलता नहीं था। रावण के तरफ राक्षस बनते थे, सो बंदर मारते थे और हम उछल कूद करके उनको मारते थे, खूब पिटे। तो हमने कहा उसमें बुरा लगा तुम्हें? अरे बोले बिल्कुल बुरा नहीं लगा, पाठ कर रहे थे। तो हमने कहा बुरा पिटने तक का बुरा क्यों नहीं लगा? अरे बोले वो रामलीला है। हमने कहा बस यही अंतर है, जिस दिन जिंदगी को भी आप जाइए, जाओ जाओ डिस्टर्ब मत करो, चलो चलो, भगवान की लीला है, बैठो बैठो बैठो। अब वो बैठ गए। तो हमने उनसे कहा कि रामलीला में तुम्हें बुरा नहीं लगा न पिटने का? बोले नहीं लगा। और हमने कहा इसने कुछ कह दिया तो बुरा लग गया? बोले हां। हमने कहा क्यों नहीं लगा उसमें? बोले वो रामलीला। हमने कहा कि जिस दिन जिंदगी को रामलीला समझ लोगे उसी दिन बुरा लगना बंद हो जाएगा। ये जिन जिन को बुरा लगता है जाओ जाओ बाद में आना, ठीक है? जाओ, बड़ी कृपा। सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम,
सीताराम जय सीताराम।
मैं भी आपसे कह रहा हूं जिंदगी को रामलीला समझ लें। रावण साधु बनकर गया, साधु होना कठिन है, बनने में कोई कठिनाई नहीं है। होने में जिंदगी लग जाती, बनने में 15-20 मिनट। घर में हुई खटपट, चलो गुरु जी के मठ पर, और गुरु जी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी, बन गए। तो रावण साधु है नहीं, बन गया, बन कर गया। उधर लक्ष्मण नाम सुनकर जानकी माता ने कहा कि प्रभु पर संकट है। लक्ष्मण जी रेखा खींच कर गए, मां इस रेखा के बाहर मत निकलना। ऐसा वर्णन मानस में इस प्रसंग में नहीं पर आगे है, रामानुज लघु रेखा खंचाई, मंदोदरी ने कहा। पर यहां बन जिस देव सौंपी सब काहू, गए जहां रावण ससिराहू।
रावण आया,
लक्ष्मण जी भी नहीं है, सीता माता अकेली।
भिक्षाम दे,
और जो देखा, अरे साधु द्वार पर भिक्षा देने के लिए जैसी निकली तो रेखा, मैं रेखा के बाहर नहीं आ सकती। रावण बोला तो फिर जा, तुम रेखा के बाहर नहीं आ सकती तो क्यों किसी साधु को भिक्षा देने की बात सोचती हो? मैं जा रहा हूं। श्री सीता जी ने सोचा, मंगन लहाई न जिनके नाही, मांगने वाले जहां मना सुन के नहीं गए वह मेरा कुल है। रेखा के बाहर निकल आई भिक्षा देने के लिए। तब रावण ने रूप दिखावा। अब आपकी रक्षा कौन करेगा? न राम जी न लक्ष्मण जी। श्री सीता जी ने कहा, यदि मैंने धर्म की रक्षा की है तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षिता। आजकल बहुत लोग कहते हैं कि पहले हम बहुत पूजा पाठ दान पुण्य करते थे, पर जब से धोखा हुआ तब से दान पुण्य करना बंद कर दिया। बात तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों से हम पूछते हैं कि भोजन करने से पेट कितनी बार खराब हुआ? बोले कई बार हमने फिर भोजन बंद किया। बोले नहीं कि हमने एक धर्म ही मिला था छोड़ने के लिए। धर्म का पालन करने वाला सदा विजयी होता है। पतितों का उद्धार करने के लिए रावण की हिम्मत नहीं थी जो ले जाता। इसीलिए मंदोदरी ने कहा, सीता सीत निशा सम आई। अच्छा, रावण ने भी चरणों की वंदना की, मनमह चरण बंदी सुख माना। ये लीला है, मन से तो चरणों की वंदना करना, ऊपर से हरण करना। और एक सज्जन कह रहे थे कि रावण ने सोचा कि कहीं ये साक्षात जगदम्बा ना हो, नहीं श्राप दे के भस्म कर दे, और कहीं साधारण राजकन्या हुई तो मैं हरण न कर पाऊं। तो मनमोह चरण बंदी सुख माना, मन से चरणों की वंदना कर ली, कहोंगी तो क्षमा कर दे। एक आदमी था जो परमात्मा का दिन रात खंडन करे, ईश्वर का खंडन खंडन खंडन, पर एक दिन देखा उसके कुर्ते की जेब में माला निकल आई। भैया जब ईश्वर का खंडन करते हो तो माला काहे को रखते हो? बोला खंडन तो इसलिए करते हैं क्योंकि ईश्वर है नहीं। तो माला क्यों रखते हो? बोले कभी कभी सोचते हैं कि शायद कहीं हुआ तो सबसे ज्यादा दुर्दशा हमारी ही होगी, इसलिए खंडन कर दे। वैसे तो तुम हो नहीं, हो तो माफ कर देना, माला भी तो घुमा रहे हैं, माफ कर। रावण का भी वही हाल। श्री जटायु जी आए,
गीधराज सुनी आरत लघु कुल तिलक नारी पहचानी।